नमस्कार, आज बात करेंगे साइबर सुरक्षा की, खास तौर पर ये जो मोबाइल फोन से जुड़ी धोखाधड़ी होती है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। इस पर हमारे पास एक साइबर विशेषज्ञ से हुई बातचीत के कुछ जरूरी हिस्से हैं।
हाँ, तो मतलब ये समझना है कि भाई ये धोखेबाज आजकल कर क्या रहे हैं, नए नए तरीके निकाल रहे हैं ना, और हम अपनी डिजिटल लाइफ उसको कैसे सेफ रखें, तो चलिए देखते हैं इसे जरा करीब से।
आजकल ये QR कोड वाले स्कैम बहुत सुनने में आ रहे हैं, ये कैसे काम करते हैं?
हाँ, ये आजकल बहुत आम हो गया है। मतलब अपराधी अब सिर्फ लिंक नहीं भेजते, QR कोड के जरिए भी लोगों को फंसा रहे हैं। जैसे एक आम तरीका है, कोई कहेगा मैं सामान खरीद रहा हूं आपसे या पैसे भेज रहा हूं, और आपको एक QR कोड स्कैन करने को बोलेगा। मान लीजिए कोई पुराना सोफा बेच रहा है ऑनलाइन, खरीदने वाला कहेगा ठीक है जी, मैं एडवांस भेज रहा हूँ, ये QR कोड स्कैन कर लीजिए।
अच्छा, और यहीं पर लोग मतलब गलती कर बैठते हैं। सबसे बड़ी चूक क्या होती है इसमें?
हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बुनियादी बात जो सबको याद रखनी चाहिए, वित्तीय लेन देन का नियम है एक। अगर आपके अकाउंट में पैसे आने हैं, मतलब क्रेडिट होने हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ना कोई लिंक क्लिक करना है, ना QR कोड स्कैन करना है।
ओह,
पैसे भेजने वाले को सिर्फ आपका फोन नंबर या UPI ID चाहिए, बस। पैसे पाने के लिए कोई एक्शन नहीं लेना होता।
ये तो बहुत ही जरूरी बात है। अच्छा, और एक तरीका जो सुनने में आता है वो प्रतिरूपण, मतलब इम्पर्सनेशन।
बिल्कुल, वो भी बहुत कॉमन है। इसमें कोई खुद को बैंक का कर्मचारी बताएगा, या पुलिस वाला, या पासपोर्ट ऑफिस से, या किसी कंपनी का आदमी बनकर कॉल करेगा। जैसे ही कोई अपनी झूठी पहचान बताता है ना, अपराध वहीं शुरू हो जाता है। ये साइबर क्राइम का बहुत पुराना और कह सकते हैं कामयाब तरीका है।
और ये सेक्सटॉर्शन वाले मामले जिसमें वो वीडियो वायरल करने की धमकी देके पैसे मांगते हैं।
देखिए, ऐसे मामलों में सबसे जरूरी चीज है डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पैसा तो कतई नहीं देना है।
पैसा नहीं देना चाहिए,
बिल्कुल नहीं। देखिए, अपराधी का पहला और अक्सर इकलौता मकसद होता है पैसा लेना। वीडियो वायरल करना सेकेंडरी होता है, या शायद वो करते भी नहीं। अगर उन्हें पैसा नहीं मिलता तो वो अक्सर, मतलब ज्यादातर मामलों में, दूसरे शिकार की तरफ बढ़ जाते हैं।
अच्छा,
पैसा देने से मामला और बिगड़ सकता है, वो और डिमांड कर सकते हैं।
हाँ, पर ऐसे मामलों की रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए, पुलिस को बताएं।
ये जानना तो बड़ा मतलब दिलचस्प है कि अपराधी अब डिवाइस से ज्यादा हमारे दिमाग को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे होता है भला? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। वो हमारी साइकोलॉजी, हमारे सोचने समझने के पैटर्न का फायदा उठाते हैं। जैसे किसी एक बात को बार बार दोहराएंगे ताकि हमारा ध्यान उसी पे अटक जाए। जैसे वो सोफे वाले केस का उदाहरण लें, अपराधी बार बार बोलेगा हाँ जी 10,000 भेज रहा हूं, 10,000 का पेमेंट है। वो ये 10,000 इतनी बार बोलेगा कि आप जब QR कोड स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं तो आपके दिमाग में वही 10,000 घूम रहा होता है। आप ये ध्यान ही नहीं देते कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं।
ओ, ध्यान भटका देते हैं मतलब।
बिल्कुल, या फिर हमारे विश्वास का, हमारे भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई आर्मी की वर्दी में प्रोफाइल फोटो लगा लेगा, हमें लगता है भाई फौजी आदमी है, भरोसे लायक होगा।
तो एक तरह से वो हमारे सोचने के जो पैटर्न है, जिन चीजों पर हम आसानी से भरोसा कर लेते हैं, उसी का फायदा उठा लेते हैं।
एकदम सही। आप इसे यूं समझ लीजिए जैसे कोई AI मॉडल होता है ना, ChatGPT वगैरह, वो कैसे काम करता है? वो अपने पास जो डेटा होता है उसी से सीखता है, उसी के आधार पर जवाब देता है।
हाँ,
वैसे ही हम इंसान भी हैं। बचपन से हमें जो डेटा मिला है, जानकारी, अनुभव, विश्वास, संस्कार, हम उसी के आधार पर सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं।
अपराधी इसी चीज पर हमला करते हैं। वो जानते हैं कि हम अक्सर मिली जानकारी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, ज्यादा सवाल नहीं करते।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है।
हाँ, अच्छा, एक डर और रहता है, पुराने फोन का क्या? अगर फोन बेच दिया या खो गया, क्या उसमें से डेटा वापस निकाला जा सकता है?
हाँ बिल्कुल, निकाला जा सकता है। और ये मत सोचिए कि ये कुछ महीने पुराना है तो नहीं निकलेगा, सालों बाद भी निकल सकता है। मुझे केस याद है, उसमें 2.5 साल पुराने चोरी हुए फोन से एक वीडियो रिकवर हुआ था, 2.5 साल, और उसी वीडियो के आधार पर अपराधी पकड़े गए थे।
2.5 साल, बाप रे।
हाँ, तो इससे पता चलता है कि फोन में जो डेटा है वो सालों बाद भी सामने आ सकता है और उसका असर हो सकता है। इसलिए फोन बेचने या फेंकने से पहले उसे ठीक से कई बार फैक्ट्री रीसेट करना, मतलब फॉर्मेट करना, बहुत जरूरी है। सिर्फ एक बार से शायद काम ना चले।
फोन का तो समझ आया, लेकिन ये जो हम रोज इतनी सारी एप्स इस्तेमाल करते हैं अपने फोन में, उनका क्या? वो कितना डेटा लेती है हमसे?
ये एक बहुत बड़ा और शायद अनदेखा खतरा है। कई एप्स, खासकर जो मुफ्त वाली होती हैं, वो जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगती हैं और डेटा लेती हैं। आपकी लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी हेल्थ की जानकारी, यहाँ तक कि आपकी राजनीतिक सोच क्या है, धार्मिक विचार क्या है, इसका भी अंदाजा लगा सकती हैं।
इतना सब कुछ?
हाँ, सोचिए कुछ ऐप्स तो माइक्रोफोन का एक्सेस ले लेती हैं, आपकी बातें सुन सकती हैं, कीबोर्ड ऐप्स आपके ओटीपी तक पढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, इसका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे होगा, ये हमें नहीं पता।
तो फिर बचाव क्या है? इन सब खतरों से बचने के लिए कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं?
हाँ, कुछ जरूरी उपाय हैं जो सबको करने चाहिए। पहला तो मोबियामर जैसी कोई अच्छी सिक्योरिटी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप QR कोड स्कैन करके बता सकती है कि वो सेफ है या नहीं, लिंक्स चेक कर सकती है, वाईफाई नेटवर्क की सुरक्षा जांच सकती है और OTP चोरी होने से भी बचा सकती है।
अच्छा, मोबियामर।
हाँ, दूसरा और ये बहुत जरूरी है, सभी जरूरी अकाउंट्स पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर ऑन करें।
2FA ये क्या होता है?
ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है।
हाँ।
मतलब पासवर्ड के अलावा एक और चीज चाहिए होती है लॉगिन करने के लिए।
हाँ।
जैसे आपके फोन पर आने वाला OTP या कोड, ईमेल, सोशल मीडिया, बैंकिंग एप्स, इन सब पर तो 2FA जरूर होना चाहिए।
ठीक है।
और तीसरा, अगर कोई साझा ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑफिस में पूरी टीम के लिए एक आईडी है या घर में सब लोग एक ही आईडी यूज करते हैं, तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि अगर उस आईडी का एक्सेस किसी गलत इंसान के पास चला गया तो उससे जुड़े फोन का सारा डेटा वो भी खतरे में पड़ सकता है। पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहें।
और ये जो मुफ्त की सेवाएं मिलती हैं, जैसे क्लाउड स्टोरेज मिलता है मुफ्त में या VPN सेवाएं, कई लोग सोचते हैं VPN लगा लिया तो बस अब कोई ट्रैक नहीं कर सकता।
देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया में कुछ भी पूरी तरह मुफ्त नहीं होता है ना। अगर कोई सर्विस आपको मुफ्त मिल रही है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसकी कीमत आप अपने डेटा के रूप में चुका रहे हैं।
सही बात है।
ये सोचना कि VPN इस्तेमाल करके आप पूरी तरह गुमनाम हो गए, एनोनिमस हो गए, ये एक बड़ी गलतफहमी हो सकती है। आखिर वो VPN कंपनियां भी तो पैसा कमाती हैं, वो मुफ्त में सेवा क्यों देंगी? हो सकता है वो आपका डेटा आगे बेच रही हो।
तो मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि ऑनलाइन लेनदेन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, खासकर जब पैसे मिलने वाले हों तब तो कुछ करना ही नहीं है। और कोई भी अनजान लिंक या QR कोड, उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, पहले सोचना है।
बिल्कुल सही। अपने डेटा की कीमत समझिए, वो बहुत कीमती है, और उसे बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, जैसे 2FA ऑन करना, भरोसेमंद ऐप्स ही इस्तेमाल करना, और हमेशा ये याद रखें कि अपराधी जो हैं वो तकनीक से ज्यादा आपकी साइकोलॉजी, आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं। चौकस रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब, अगर सालों पुराने फोन से डेटा वापस आ सकता है तो क्या हमारा डिजिटल फुटप्रिंट यानी इंटरनेट पर हमारे जो निशान छूट जाते हैं, क्या वो कभी पूरी तरह मिटते हैं? और जो डेटा आज हमारा इकट्ठा किया जा रहा है ऐप्स के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए, क्या हम कभी पूरी तरह जान पाएंगे कि भविष्य में उसका इस्तेमाल कैसे और किसके द्वारा होगा?